اب امام کی حیات طیبہ کے کچھ واقعات کو بیان کریں گے جو انشاءاللہ تعالی ہمارے لیے اصلاح کا باعث ثابت ہوں گے۔ امام کے زمانے میں نیشا پور کے شیعہ جمع ہوئے اور محمد ابن علی نیشا پوری کا انتخاب کیا کہ وہ مدینہ جا کر امام سے شرعی مسائل پوچھیں۔ امام کی خدمت میں خمس بھی بھیجا گیا۔ کچھ ہدیے آپ کی خدمت میں بھیجے جو کہ 30,000 دینار اور 50,000 درہم اور کچھ کپڑے تھے۔ ایک مومنہ شتیتہ نے 4 درہم کی قیمت کا کپڑا جو انہوں نے اپنے ہاتھ سے بنایا تھا اور 1 درہم بھیجا اور کہا، ان اللہ لا یستحیی عن الحق، بے شک اللہ حق سے حیا نہیں کرتا۔ امام کا حق اگرچہ کم ہی کیوں نہ ہو ادا کرنا ضروری ہے۔ نیشا پور کے لوگوں نے محمد ابن علی نیشا پوری کے ہاتھ کاغذوں پر سوالات بھی تحریر کر دیے تھے اور ان کو اس طرح سے بند کر کے مہر لگا دی تھی کہ کوئی کھول نہ سکے، اور کہا تھا کہ یہ رات کو امام کو دینا، صبح کو واپس لینا، اگر یہ دیکھو کہ مہریں صحیح و سالم ہیں یعنی ان کو توڑا نہیں گیا، بغیر مہر توڑے مسائل کا جواب دیا گیا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ امام ہیں اور یہ سب مال انہیں دے دینا، لیکن اگر ایسا نہ ہو تو ہمارے پاس واپس لے آنا۔ یعنی یہ لوگ یہ جاننا چاہتے تھے کہ امام وقت کون ہے تاکہ انہیں خمس دیا جائے اور مسائل شرعی دریافت کیے جائیں، اور ہم آئندہ اس بات کا ذکر کریں گے، بیان کریں گے کہ اس زمانے میں حالات ایسے نہیں تھے کہ امام اپنے آپ کو امام وقت کی حیثیت سے عوام الناس کے سامنے ظاہر کر سکیں، لہٰذا لوگوں کو امام کو پہچاننے اور ان تک پہنچنے میں مشکل پیش آ رہی تھی۔ بہرحال محمد ابن علی نیشا پوری مدینہ گئے اور امام کے بھائی عبداللہ کے پاس پہنچے اور ان کا امتحان لیا اور سمجھ گئے کہ وہ امام نہیں۔ ان کے گھر سے باہر نکلے اور کہنے لگے کہ خدایا مجھے راہ راست کی ہدایت فرما۔ ایسے میں ایک لڑکا آیا اور کہنے لگا کہ چلیں ان کے پاس جنہیں آپ چاہتے ہیں، وہ آپ کو بلا رہے ہیں، اور وہ لڑکا انہیں امام کے دروازے پر لے گیا۔ جب امام نے انہیں دیکھا تو محمد ابن علی نیشا پوری کو ان کی کنیت سے مخاطب کر کے فرمایا امام نے کہ اے ابا جعفر، کیوں نا امید ہوتے ہو، میری طرف آؤ، میں حجت خدا ہوں، ولی خدا ہوں۔ اس کے بعد امام نے ان سب چیزوں کا نام لے کر ان کو بتا دیا، ان کا نام لے کر ان کے بارے میں بتا دیا جو وہ اپنے ساتھ لے کر آئے تھے، علی ابن محمد نیشا پوری، اور یہ بھی فرما دیا کہ میں نے ان مسائل کا مکمل جواب دے دیا ہے جو کاغذوں میں ہیں۔ اور امام نے فرمایا کہ شتیتہ کا درہم بھی لے آؤ۔ اور یہ سب سن کر محمد ابن علی حیران رہ گئے اور وہ سب کچھ لا کر امام کے سامنے رکھ دیا۔ امام نے شتیتہ کے درہم کو ان کے کپڑے کے ساتھ اٹھایا اور وہی فرمایا جو شتیتہ نے کہا تھا، ان اللہ لا یستحیی عن الحق، اور فرمایا ابو جعفر شتیتہ کو میرا سلام کہنا اور یہ رقم انہیں دینا جو کہ 40 درہم تھی، اور کہنا ہم نے یہ ہدیہ بھیجا ہے تمہارے لیے، اپنے کفن کا ایک ٹکڑا کہ جس کا کپڑا ہماری اپنی زمین قریہ سیدہ کا ہے جو جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کی بستی ہے، اور میری بہن حلیمہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی بیٹی نے اسے بنایا ہے، اس کپڑے کو بنایا ہے، اور شتیتہ سے کہنا کہ ابو جعفر پہنچے تو ان سے یہ چیزیں لے لو کیونکہ تم 19 دن سے زیادہ زندہ نہیں رہو گی، اور میں خود آ کر تمہاری نماز جنازہ پڑھاؤں گا، اور کچھ سامان جو محمد ابن علی نیشا پوری لائے تھے اس کے لیے فرمایا امام نے کہ یہ مال اس کے مالکوں کو واپس کر دینا۔ جب ابو جعفر یعنی محمد ابن علی نیشا پوری واپس خراسان آئے تو دیکھا کہ جن لوگوں کا مال امام نے قبول نہیں کیا تھا، واپس کر دیا تھا، وہ فتحی مذہب کے ہو چکے تھے، یعنی امام کے بھائی عبداللہ ابن افتح کی امامت کو قبول کر لیا تھا، لیکن شتیتہ اپنے مذہب حق پر یعنی امام موسیٰ ابن جعفر علیہ السلام کی امامت کے عقیدے پر باقی تھیں۔ اس کے بعد پھر ہوا یہ کہ امام کا سلام اور ان کا بھیجا ہوا ہدیہ ابو جعفر نے شتیتہ کو پہنچا دیا، اور 19 روز شتیتہ زندہ رہیں، اور جب وہ فوت ہوئیں تو امام ایک اونٹ پر سوار ہو کر تشریف لائے۔ میت کے مراسم ختم ہونے کے بعد آپ پھر سوار ہو کر بیابان کی طرف جانے لگے تو فرمایا کہ میرے اصحاب کو سلام کہنا، और उनसे कहना कि जब भी कोई दुनिया से जाता है, मैं और आइम्मा अलैहिस्सलाम उसके जनाजे में शिरकत करते हैं। बस अपने मामले में अल्लाह से डरो और तक्वाए इलाही इख्तियार करो। शतीता ने नहायत खुलूस के साथ इमाम की खिदमत में खुम्स भेजा। अगर उन्होंने 1 दिरहम भेजा, इमाम ने उन्हें 40 दिरहम भेजे। अगर शतीता ने अपने हाथ से बनाया कपड़े का टुकड़ा भेजा, तो इमाम ने अपने कफन का टुकड़ा भेजा, जो कि आपकी बहन दुख्तर इमाम जाफर सादिक अलैह सलाम के हाथ का बनाया हुआ था। यानी खुम्स इमाम की खिदमत में भेजा, तो इमाम ने भी पलट के हदिये भेजे। हम जो खुम्स देते हैं, उसके बाद इमाम की तरफ से हमें क्या कुछ अता हो रहा होता है, ये हमारी जाहिर बीन निगाहें नहीं देख पा रही होती हैं। इमाम को हमारे माल की ज़रूरत नहीं है, खुदा को भी खुम्स और ज़कात की ज़रूरत नहीं, मगर ये वाजिबात इंसानों की फलाह के लिए आयद किए गए हैं। इसकी मसलहतें हम जानते हैं। खुम्स की अदायगी से माल कम नहीं होता, बल्कि उसमें इजाफा होता है, माल पाक हो जाता है, बरकत आ जाती है। और वाजिबात अदा ना करने से परेशानियाँ आती हैं। दुआए कुमाइल में है कि या अल्लाह मेरे वो गुनाह बख्श दे जिनकी वजह से बलाएं नाजिल होती हैं। कितने ही लोग मुश्किलात में, मसाइल में गिरफ्तार हैं, कोशिशों के बावजूद मुश्किलें हल नहीं होती। अगर पूछा जाए कि क्या आप खुम्स देते हैं, तो वो जवाब दे दें कि नहीं, खुम्स तो नहीं, सदका देते हैं। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे किसी से पूछा जाए कि क्या आप रमज़ान के वाजिब रोज़े रखते हैं, और वो जवाब दे कि नहीं, रमज़ान के वाजिब रोज़े तो नहीं रखता, बल्कि मुस्तहब रोज़े रख लेता हूँ। हर मुसलमान ये जानता है कि रमज़ान के रोज़े वाजिब हैं। मुस्तहब रोज़े रखे जाएं सवाब है, लेकिन नहीं भी रखे जाएं तो गुनाह नहीं। रमज़ान का रोज़ा छोड़ना गुनाह कबीरा है। इसी तरह सदका देना अच्छी बात है, लेकिन वाजिब नहीं है। खुम्स अदा ना किया जाए तो गुनाह कबीरा है, खुदा और मासूमीन की नाराज़गी का बाइस है। जो खुदा और इमाम ज़माना की खुशी चाहता है, वो खुम्स के बारे में आगाही हासिल करे और हक़ इमाम अदा करे। किताब गौहर यगाना में है कि इमाम ज़माना अलैहि सलाम ने फ़रमाया कि अगर किसी के पास हमारा माल सहम इमाम हो और वो उसमें उस तरह तसर्रुफ़ करे जिस तरह अपने माल में तसर्रुफ़ करता है, बस जो भी ऐसा करे वो मलऊन है, और हम बरोज़ क़यामत उसके दुश्मन होंगे। क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स मेरी इतरत से वो हलाल समझे जो अल्लाह ने उसके लिए हराम करार दिया है, वो मेरी ज़बान से मलऊन है, और हर नबी मुस्तजाबु दावात की ज़बान से मलऊन है। लिहाजा जो भी हम पर जुल्म करे, वो भी उन्हीं जालिमों में शुमार होगा जिन्होंने हम अहले बैत अलैहिस्सलाम पर जुल्म किया, और उस पर खुदा की लानत होगी, क्योंकि अल्लाह ने कुरान में जालिमों पर लानत फरमाई है। और इसी किताब गौर यगाना में इमाम ज़माना अलैहि सलाम का ये फरमान भी तहरीर है कि जिसने हमारे अम्वाल यानी खुम्स वगैरह में से कुछ भी खाया, उसने अपने पेट में आग को भरा और अनकरीब जहन्नुम में जाएगा। इस किताब के मौलिफ ये लिखते हैं कि इमाम के फरमान से मालूम होता है कि सादात का हक़, खुसूसन इमाम ज़माना अलैहि सलाम का हक़ अदा ना करना कितना बड़ा गुना है। लिहाजा इस तरफ तवज्जो देने की ज़रूरत है। एक और मशहूर वाक़या जिसे सुनते रहते हैं कि इमाम एक दिन बगदाद में अपने इमाम बगदाद में एक घर के पास से गुज़र रहे थे, तो इस घर से साजो रक़्स की आवाज़ सुनाई दी। उसी वक्त इत्तेफाक से उस घर की एक कनीज़ बाहर निकली कूड़ा करकट फेंकने के लिए। इमाम ने उससे फरमाया कि ऐ कनीज़, इस घर का मालिक आज़ाद है या ग़ुलाम? उस कनीज़ ने कहा कि आज़ाद है। इमाम ने फरमाया, सच कहती हो, अगर गुलाम होता तो अपने आका से डरता। जब वो कनीज़ घर वापस गई, मालिक ने देर से आने की वजह पूछी। कनीज़ ने वाक़या बयान कर दिया। अजीब तासीर थी इमाम के जुमलों में। उस शख्स की ज़िंदगी में इनकलाब बरपा हो गया कि अगर मैं वाकई बंदा होता तो अपने आका मालिक यानी खुदा की नाफरमानी ना करता। वो उसी वक्त उसी आलम में नंगे पांव बाहर की तरफ भागा, इमाम की खिदमत में जाकर माजरत की, गिरिया किया, इजहार शर्मिंदगी के साथ हज़रत के दस्ते मुबारक पे तौबा की, और कहता है कि आपने सच फरमाया, मैं वाकई तौर पर अल्लाह का बंदा बनना चाहता हूँ। इमाम ने उसके हक़ में दुआ की और वो शख्स तौबा करके अल्लाह के सौले तरीन बंदों में शामिल हो गया। इस शख्स का नाम बशर था। इसे बशर हाफ़ी कहा गया, हाफ़ी इसलिए कि वो हर वक्त नंगे पाँव रहता था, और ज़ाहिरन इसकी वजह ये थी कि वो पा बरहना नंगे पांव दौड़ कर इमाम की खिदमत में पहुंचा था और सआदत उज़्मा पर पहुंचा। जब इस तरह की खबरें हारून तक पहुंचती तो हारून ख़तरे का एहसास करता। हारून इमाम के मानवी नफूस को ख़त्म करने की कोशिशें करता रहता था। ऐसरुल मकाल में है कि इमाम एक अरसे से जिंदान में मज़लूमाना ज़िंदगी गुजार रहे थे और हारून ने साजिश तैयार की कि माज़ अल्लाह इमाम की हैसियत कम की जाए। उसने एक अक्लमंद और साहिब जमाल कनीज़ को जिंदान में भेजा कि इमाम को खाना पानी पेश करे, वहीं रहे। जब ये कनीज़ उस तंगो तारीक जिंदान में गई और इमाम की अजमत और इबादत को देखा, उसकी ज़िंदगी में इनकलाब बरपा हो गया। उसने भी अपना सर सजदे में रख दिया। मुसलसल सजदे इलाही में थी, सर नहीं उठाती थी, इबादत में मशगूल हो गई। हारून के जासूसों ने हारून को खबर दी। उस कनीज़ को दरबार में बुलाया गया। अब जो देखा तो वो नहीं रही थी। कभी आसमान को देखती, कभी ज़मीन को देखती थी, खौफे खुदा से कांप रही थी। ये हस्तियाँ वो हैं कि ज़िंदगियाँ तब्दील कर देती हैं, अहले बैत अलैहिस्सलाम की हस्तियाँ। उस कनीज़ से पूछा गया कि ये कैसी हालत है जो तुम में पैदा हो गई है? अह कनीज़, तूने अपना ये हाल क्यों बनाया है? कहने लगी, मैंने अब्दे सोहले को इसी तरह देखा है। हमेशा वो कनीज़ इसी हाल में रही, यहाँ तक कि वफात पा गई। और सीरत आले मोहम्मद में है कि कहती है, मैंने जब तकवा और परहेज़गारी के अजीम पैकर को देखा तो मुझे शर्मिंदगी हुई कि हम क्या चाहते हैं और यह कैदी किस तरह इबादत इलाही में मसरूफ़ है। मैं अपनी गलती पर अल्लाह से माफ़ी मांगती हूँ और वहीं इंतकाल कर गई। हारून इमाम के ख़िलाफ़ मुसलसल कोशिशों में लगा रहता था। ऐसुल मकाल में रिवायत है कि एक दफ़ा हारून ने एक जादूगर बुलाया ताकि वो करतब दिखाकर इमाम को नाऊज़ु बिल्ला शर्मिंदा करे। दस्तरखान बिछाया गया। दो रिवायतें हैं, एक ये कि इमाम का ग़ुलाम इमाम के लिए रोटी उठा कर इमाम के पास रखना चाहता था। दूसरी रिवायत है कि खुद इमाम रोटी उठाना चाहते थे। जादूगर ने जादू किया, रोटी उड़ जाती थी। हारून इतना खुश हुआ कि हंसी पे काबू ना रख सका। इमाम ने सर मुबारक बुलंद किया एक शेर की तस्वीर की तरफ जो कि पर्दे पर बनी हुई थी और फरमाया, ए अल्लाह के शेर, इस दुश्मन खुदा को पकड़ लो। इमाम का हुक्म मिलते ही वो तस्वीर का शेर एक ताकतवर शेर की शक्ल में जाहिर हो गया और उसने जादूगर को खा लिया। हारून और उसके साथी गश खाकर गिर पड़े। काफ़ी देर बाद होश आया तो हारून इमाम से कहता है कि मैं आपको अपने हक़ की कसम देता हूँ कि उस तस्वीर के शेर से कहें कि वो इस जादूगर को वापस कर दे। इमाम ने फरमाया, अगर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के असा ने जादूगरों की रस्सियाँ वापस पलटाई होती तो ये शेर भी जादूगर को वापस कर देता। सिला रहमी से मुतालिक इमाम का एक वाक़या मिलता है कि एक शख्स याकूब मगरिबी, जिनका नाम है, इमाम की खिदमत में हाजिर हुए। इमाम ने इनसे फरमाया कि तुम्हारा अपने भाई से फला मकाम पर झगड़ा हुआ, मामला यहाँ तक पहुँचा कि तुमने एक दूसरे को बुरा भला कहा और क़तअ ताल्लुक़ कर लिया। ऐसा करना ना मेरे दीन में है ना मेरे आबाओ अजदाद के दीन में है। हम किसी को इन चीज़ों की इजाज़त नहीं देते। बस खौफ खुदा करो, अजाब इलाही से डरो। इस अमल की वजह से अन करीब मौत तुम्हें जुदा कर देगी। तुम्हारा भाई अपने इस सफ़र में मर जाएगा और तुम अपने किए पर पशिमान हो जाओगे। याकूब मगरिबी ने इमाम से कहा कि मौला, आप पर कुर्बान जाऊँ, मुझे कब मौत आएगी? इमाम फरमाते, तुम्हारी मौत भी आ चुकी थी मगर तुमने अपनी फूफी के साथ एक मकाम पर सिलाए रहमी हुस्ने सलूक किया जिसकी वजह से तुम्हारी उम्र 20 साल या 20 माह बढ़ गई। और आखिरकार याकूब के भाई का वही अंजाम हुआ जिसकी इमाम ने खबर दी थी कि वो अपने वतन पहुंचने से पहले ही मर गया और रास्ते में ही उसे दफन कर दिया गया। सिला रहमी के बहुत फ़वाद बताए गए जिनमें उम्र का तवील होना है, मौत का टल जाना, बलाओं का दूर होना, रिस्क में बरकत, फ़ुक्र फ़ाका का दूर होना, नस्ल का ज़्यादा होना, रिश्तेदारों के हुकूक़ की अदायगी घरों को आबाद करती है, नागहानी मौत से बचाती है, आखिरत में हिसाब किताब में आसानी का बाइस है। आजकल मसाइल में ये बहुत ज़्यादा है कि रिस्क में बरकत नहीं, नागहानी अमवात बहुत ज़्यादा हैं और लोग मसाइल के हल के लिए अमल, दुआएं वगैरह पूछ रहे होते हैं, मगर इसके बावजूद हाजात पूरी नहीं हो रही होती, मुश्किल हल नहीं हो रही होती। दुआ कुमैल में ये भी कहा जा रहा है अल्लाह से कि या अल्लाह, मेरे वो गुनाह बख्श दे जो दुआ कबूल नहीं होने देते। कभी इस तरह भी हम मसाइल को हल करके देखेंगे, जब किसी मुश्किल में मुब्तला हों तो ये देखें कि खुदा की कोई नाफरमानी तो नहीं की है और खुदा को राज़ी करने की कोशिश की जाए। अगर कोई मौलाना या आमिल कोई अमल बताकर ये कह दें कि तुम्हारा काम हो जाएगा, हमें यकीन आ जाता है। खुदा के वादों पर भी तो यकीन करें। एक मौलाना की बात पर यकीन है हमें, एक मौलाना की बात पर यकीन है, और वो जिन्हें हम दुआए तवस्सुल में बार बार ये कहकर मुखातिब करते हैं, या सैयदना व मौलाना, ए हमारे सरदार, हमारे आका, उन्होंने जो मुश्किलात का हल बताया, खुदा का पैगाम पहुंचाया, उस पर भी तो यकीन के साथ अमल करने की ज़रूरत है। अगर ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते तो कम अज़ कम इस हदीस पर अमल कर लें। किताब आदाब इस्लामी में हदीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, सिला रहम करो अपने अरहाम के साथ, चाहे सलाम के ज़रिए ही क्यों ना हो। दूसरी हदीस में फरमाते हैं, अपने अरहाम यानी रिश्तेदारों से सिला रहम करो, चाहे एक घूंट पानी के ज़रिए हो। और सिला रहम का सबसे बेहतरीन तरीक़ा यह है कि उनको अज़ियत ना दी जाए। हम ज़िंदगी में हर हर जगह बहुत कुछ बर्दाश्त कर रहे हैं। मिसाल के तौर पे जॉब करने वाले अफराद मसाइल में गिरफ्तार हैं, मगर बर्दाश्त करते हैं। अगर उनसे कहा जाए जॉब छोड़ दें तो वो कहेंगे कि घर भी तो चलाना है, मजबूरी है। वालदैन को बच्चों के मामलों में खुसूसन तालीम के हवाले से स्कूल वालों की इताअत करना पड़ रही होती है। वालदैन से कहा जाए आप स्कूल वालों से मुतमईन नहीं, मत बर्दाश्त करें, तो वो जवाब देंगे बच्चों के मुस्तकबिल का मामला है। यानी हर जगह हमारे पास दुनियावी लिहाज से कोई माकूल उज़्र मौजूद है। तो खुदा की खातिर और अपने लिए बेशुमार फ़ायदों की खातिर रिश्तेदारों से सिला रहमी भी की जा सकती है। दुनिया का कोई भी फ़र्द रिज़्क़ की फरावानी, तवील उम्र, घरों के आबाद रहने की, नागहानी मौत से बचने की ज़मानत नहीं दे सकता, लेकिन ये परवरदिगार की तरफ से सिलाए रहमी के नतीजे में इससे कहीं ज़्यादा फ़ायदे बताए जा रहे हैं। ऐसुल मकाल में है सिलाए रहमी के हवाले से एक वाक़या, के हारून रशीद ने इमाम के बारे में मालूमात हासिल करने के लिए इमाम के भाई इस्माइल के बेटे को बुलाया। ये इमाम का भतीजा था और इमाम इस पर बहुत एहसान फरमाते थे। जब इमाम को इल्म हुआ कि हारून की तरफ से उसे बुलाया गया है, तो इमाम ने उसे बुलाया भतीजे को और फरमाया, मैं तुम्हारा कर्ज़ अदा करूँगा, तुम्हारे अखराजात का कफ़ील होऊंगा। उसने कबूल नहीं किया और कहने लगा, मुझे कोई वसीयत कीजिए। इमाम ने फरमाया, मैं वसीयत करता हूँ कि मेरे खून बहाने में शरीक ना होना और मेरी औलाद को यतीम ना करना। उसने दोबारा कहा कि वसीयत करें। इमाम ने दोबारा यही वसीयत फरमाई, यहाँ तक कि 3 मरतबा इमाम ने यही वसीयत फरमाई। और फिर इमाम ने 300 दीनार और 4,000 दिरहम उसे अता फरमाए। जब वो चला गया तो इमाम ने फरमाया कि खुदा की कसम, ये मेरा खून बहाने में कोशिश करेगा, मेरे बच्चों को यतीम करेगा। लोगों ने इमाम से अर्ज़ की कि फ़र्जंदे रसूल, अगर ऐसा है तो फिर आप क्यों उसके साथ एहसान करते हैं? इमाम ने फरमाया, अगर मैं इसके साथ कराबतदारी का लिहाज रखूँगा और वो इसका लिहाज नहीं करेगा तो अल्लाह उसकी मुद्दत हयात ख़त्म कर देगा। इमाम ने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत बयान की। मफहूम यह है, नतीजा उससे यह हासिल हो रहा है कि इंसान अपने किसी रिश्तेदार के साथ एहसान करे और वो रिश्तेदार एहसान के मुकाबले में बदी करे, और ये एहसान करने वाला अपने एहसान को ना रोके तो खुदा उस बदी करने वाले से अपनी रहमत मुनक़ता कर देता है और उसे अपने अज़ाब में गिरफ़्तार कर देता है। इमाम का भतीजा बगदाद जाकर हारून से मिला और उसको खलीफा कहकर सलाम किया और कहने लगा कि एक ही ज़माने में दो खलीफा हैं। हारून को भड़का रहा है, कहता है कि एक ज़माने में दो खलीफा हैं, आप इस शहर में खलीफा हैं तो मूसा इब्ने जाफ़र मदीने में खलीफा हैं। लोग अतराफ आलम से उनके लिए खराज लेकर आते हैं और उन्होंने ख़जाने जमा कर लिए हैं। उस पर हारून ने उसको 1,00,000 दिरहम भिजवाए, मगर जब वो घर वापस आया, अचानक किसी बीमारी में मुब्तला हुआ और उस रकम को हाथ नहीं लगा सका और मर गया।